سلام علیکم.
وعلیکم السلام. معاف کیجیے گا، سالار صاحب کا گھر یہی ہے؟
نہیں،
کیا مہتاب بلڈنگ یہی ہے نا؟ صحیح ہے،
ہاں، لیکن سالار کا گھر یہاں نہیں ہے.
آئی تھنک میرے خیال میں غلط ایڈریس دے دیا.
آپ کو کون سا بلاک بتایا ہے؟
کہاں؟ سعادت آباد، نسیم روڈ، مہتاب بلڈنگ، بلاک نمبر 6. سالار صاحب، ان کی بیٹی کا نکاح ہے.
لیکن یہاں کوئی سالار نہیں رہتا. رہتا ہے کیا؟ آپ کا ایڈریس غلط ہے، یہاں کوئی سالار نہیں رہتا.
ٹھیک ہے، لیکن مہتاب بلڈنگ تو یہی ہے نا؟
ہاں، مہتاب بلڈنگ یہی ہے، لیکن میں یہاں کے تمام افراد کو جانتی ہوں. آپ فون کیوں نہیں کر لیتی ہیں؟
اچھا آئیڈیا ہے. جواب نہیں دے رہے ہیں. اٹھا نہیں رہے ہیں. اس وقت بہت نارش ہوگا کہ کوئی فون کو اہمیت ہی نہیں دے گا. معاف کیجیے جو میں نے جمعے کے دن آپ کو زحمت دی.
کوئی بات نہیں.
میرے شوہر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مرد کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے.
اتفاق سے میرے شوہر بھی یہی کہتے ہیں.
سچی؟
ہاں.
اسی لیے تو ہم عورتیں ہمیشہ کہتی ہیں کہ تمام مرد ایک جیسے ہیں. میں واقعی میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کو زحمت دی.
کوئی بات نہیں، گلی کے نکڑ پر ایک سپر مارکیٹ ہے، اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں، شاید ان کو ہی پتا ہو.
جی، اچھا ہوا جو میں نے ڈرائیور کو واپس نہیں بھیجا، ورنہ تو. میں ڈھونڈ لوں گی، اتنی آسانی سے میدان نہیں چھوڑوں گی.
کیا نسیم اسٹریٹ میں کوئی اور مہتاب بلڈنگ بھی ہے کیا؟
مجھے کیا پتا.
میری طبیعت خراب ہے. کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا تھا؟
مجھے تباہ کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے سے زندگی گزار رہا ہے.
جلدی سے بتاؤ کیا ہوا.
میرا بدن لرز رہا ہے.
میری امی کہتی ہیں کہ جب تک انسان خود نہ لرزے دوسروں کو نہیں لرزا سکتا. سوچو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، گولی سیدھی اس کی پیشانی پر جا کے لگی ہے.
جلدی کرو، چلتے ہیں، ڈرتی ہوں کہیں نیچے نہ آ جائے.
پہلے تو یہ کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، دوسرے یہ کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. اگر اتنا ہی ڈرنا تھا تو تمہیں یہ کھیل شروع نہیں کرنا چاہیے تھا.
فرانا چلو، ابھی میری طبیعت خراب ہے.
آج تم میرے دروازے پر مجھے ڈرانے کے لیے آئی تھی.
میرے گھر سے باہر جاؤ.
پہلے میں تمہیں اس دنیا سے بھیجوں گا، اس کے بعد نکلوں گا. मैंने कहा था ना कि अगर मेरे बीवी बच्चों के करीब भी आई तो मार दूंगा, अंजाम के बारे में भी नहीं सोचूंगा, कहा था ना?
मार दो। मैं इसी बात का इंतजार कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। देखो, मुझे अब अपने घर वालों से ना डराना। जो जिंदगी तुमने मेरे लिए बनाई है वो तो मरने से बेहतर है। कम से कम इतने तो मर्द बन जाओ कि मुझे मार सको। मारो ना। मारने की धमकी देते हो तो मार दो, एक बार काम तमाम करो। अरे तुम तो मर्द नहीं हो, तो मर्द की नकल क्यों उतारते हो?
कौन था
तुम्हें? क्या, मेरे घर से बाहर निकल जाओ।
तुमने जो जो चीजें कही थी खरीद के ला,
सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ।
सर, पुलिस को फोन करो।
तो इसकी उस्तानी तुम हो?
अपना निकम्मा वजूद लेकर यहाँ से निकल जाओ।
सहर को उस्ताने की कोई जरूरत नहीं है।
सहर, तुम अपनी कब्र खोद रही हो।
एक कब्र खोद रही हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि उसमें कौन लेटेगा।
बेहतर है आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अगर कोई बात करनी है तो आपके घर में होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं।
ये वही है ना जिसके घर आधी आधी रात तक तुम रहती थी?
तुम्हारे नालायकी की सजा काटती थी।
तो तुम दोनों सर जोड़कर बैठ गई और अपने अकले नाकिस में सोचने लगी कि फानी से किस तरह से 250 मिलियन तुमान बटोरा जा सकता है। तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं सहर।
हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना, लेकिन अफसोस के देर से पहचाना। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुमने मुझे नहीं पहचाना।
मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, और अगर होते भी तो ना देता। जानती हो क्यों? इसलिए कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि औरत जात को भत्ता दूं, चाहे वो एक हो चाहे दो।
तुम्हारी गैरत, तुम में तो गैरत ही नहीं है। तो मैं अगर जरा बराबर गैरत होती तो उस दिन जो मुंह में आया मुझसे ना कहते, तुम इन्हीं बातों के लायक थे।
तुर्की बतुर्की जवाब, बकवास बोली तो बकवास सुना।
लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो पैसे दे देती और अपनी इज्जत बचा लेती।
तुम्हारी वो सारी मोहब्बत की बातें और एक दूसरे पर मर मिटने की कसमें इसलिए थी कि बात को यहाँ तक पहुँचा?
मैंने बात यहाँ तक पहुँचाई है तुमने?
इस सारी मुद्दत में इसलिए मेरे साथ रही। तुमने पहले से मेरी दौलत के लिए प्लान बनाया हुआ था, हैं?
और तुम क्या? तुम सिर्फ इसीलिए मेरे पास आए थे क्या? आखिर मैं मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों के पास चले जाओ?
जब तुम्हें गैर मर्द को मेरी इजाजत के बगैर अपने घर में आने देती हो तो मुझे भी इस बात का हक है कि मैं गुस्से में आऊं, जो चाहो कहूं।
सर, इसकी बातों में मत आओ। ये चाहता है कि इन बातों से दोबारा तुम्हारे साथ सुलह सफाई करे और अपने लिए एक मौका हासिल कर सके, ताकि बगैर किसी खर्च के तुम्हारी कमर तोड़े और अपनी जान छुड़ा सके।
मोहतरमा, आप हमारी जिंदगी में दखल ना दें। प्लीज हमारे घर से अपनी मनुष्यकल दफा करें।
देखा क्या हुआ, पैसे की बात आते ही तुम दोबारा उसकी शरीक हयात बन गई और ये तुम दोनों का घर बन गया।
सहर, इससे कहो के बाहर चली जाए।
ये तुम हो जिसे दफा होना चाहिए, मेरे घर से बाहर जाओ हमेशा के लिए। सिर्फ पहले ये बताना होगा कि मेरा पैसा कब दोगे, वरना तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुंच के काम तमाम कर दूंगी। बस
अगर ऐसा चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शक मत करो कि यह पैसा तुम्हारे गले से नहीं उतरेगा।
पैसा कब दोगे?
जब होगा तब।
कल ही?
मैं एक साथ 250 मिलियन तुम्हारे कहां से लाऊंगा? तुम्हें तो मेरी जिंदगी के हालात का इल्म है।
तुम्हारी जिंदगी के हालात का मुझसे कोई रब नहीं, ये शहसा का मसला है। मुझे कल ही अपना पैसा चाहिए।
जब होगा तो बता दूंगा।
साहर, ये जो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, उनकी बातों में मत आना। ये तुम्हें पैसा ना देने के लिए ये ड्रामेबाजियां कर रहा है। क्या हुआ? जो ही तुमने अपने हक और हिसाब की बात की, एकदम से गरीब और कंगाल बन गए। इसके पास पैसा है, बहुत ज्यादा है। क्या उसने कुछ अरसा पहले खुद तुम्हें नहीं कहा था कि शाइस्ता के लिए 4x4 गाड़ी खरीदना चाहता है? तुम ही ने मुझे तो सुनाया था, भूल गई? तो अब उसकी गर्दन पर पांव रखो और इतना दबाओ कि उससे अपना हक ले सको। उसे सोचने का मौका ना दो, वरना ये जानवर तुम्हें पैसा ना देने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो जाके उससे अपना पैसा लेके 4x4 गाड़ी खरीदती और उसके सामने इतना चलाती कि उसे पता चलता कि दुनिया किसके हाथ में है।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। बताओ भाई।
मुझे आरश कमाली साहब से काम है कुछ।
हाँ बताए। अरे बड़े आदमी, मुझे इसलिए कमरे से बाहर लाए हो कि मेरी कीमत लगा सको?
मैं आपके दोस्त हमीद का भतीजा हूँ, हमीद फरामद। मुझे बताया गया कि आप जानते हो कहाँ हैं।
जाओ भाई जाओ, खुदा तुम्हें कहीं और से रोजी दे। मैं क्या जानूं कहाँ है भाई।
मुस्तफा दानिश्वर साहब ने मुझे बताया था कि आप हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं और आपको इल्म है कि हमीद चचा कहाँ पर है।
ये सब तो चढ़ाए बगैर मस्त है। चढ़ा लिया तो क्या हाल होगा। आओ अंदर आओ अंदर आओ। अरे तुम्हें ये मुस्तफा दानिश्वर कहाँ से मिला? क्या अब भी वहीं पर है, वही अमीन हुजूर चौक पर?
जी हाँ।
आओ आओ अंदर अंदर आओ। तुम किस लिए उसे ढूंढ रहे हो?
बुरी बात है क्या?
नहीं, ये बताओ हाजी फरहमान साहब अभी जिंदा है?
जी जिंदा है।
ओह, जूते समेत आ गए।
अरे माजरा चाहता हूँ, देखा आप चप्पल पहन के आ रहे हैं, अभी उतारता हूँ मैं।
नहीं नहीं, अब तो आ चुके, छोड़ो। क्या हिस्सा विस्सा तकसीम करने की बात है?
नहीं।
अब ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद उसे ढूंढने निकले हो? किस लिए?
असल में हम तो बहुत अरसे से उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो खुद को क्यों हमसे छुपाते हैं।
शायद उसका दिल नहीं चाहता हो कि आप उसे देखें। ये अच्छा अच्छा, ये बताओ चाय लाऊं तुम्हारे लिए? ये किसने दिया मुझे?
दरवाजे पर फरार करना चाहता था।
जाओ, जाओ, जाओ। देखो हाजी नेमत साहब हमारे ऊपर बहुत हक रखते हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, जानते हो? मेरा बिल्कुल जी नहीं चाहता कि उनका दुख देखूं।
तो क्या हामिद चचा की हालत इतने खराब है कि अगर हाजी नेमत देख लिया तो दुखी होंगे?
नहीं मालूम, मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने तो बड़े अरसे से उसे देखा ही नहीं।
ये मुस्तफा दानिश्वर कह रहे थे कि हामिद चचा एडिक्ट हो गए हैं, सच कह रहे?
मुस्तफा ने बहुत गलत बात की है। क्या उसने कभी हमीद को नशा करते हुए देखा है क्या?
लेकिन आपकी बातों से भी तो यही नजर आता है।
नहीं, मैंने उस लिहाज से नहीं कहा, اصل میں یہ حمید سب سے ناراض تھا، سب سے شاکی تھا، خاص کر اپنی پھوپھی سے۔
سریا پھوپھی سے؟
ہاں ہاں، سریا پھوپھی سے، اس سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ البتہ حق بجانب تھا، کیونکہ سریا بہت اچھی عورت نہیں تھی۔ میں ایک دفعہ اس سے ملنے گیا تھا، بہت بد اخلاق اور متکبر۔ نہ صرف یہ کہ مجھے انسان نہیں سمجھتی تھی، بلکہ کسی کو بھی انسان نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس کی نظر میں کوئی انسان تھا ہی نہیں بالکل۔
حمید چچا کا سریا پھوپھی سے کس بات پر اختلاف تھا؟
کیونکہ اس نے بہت غلط ٹائم پر اپنا پیسہ مانگا، پہلے لا کے زبردستی حمید کو دیا۔
اپنا پیسہ؟
ہاں نا، بالکل۔ وہ بالکل التماس کرنے پہ اتر آئی تھی کہ حمید یہ پیسہ لے لے۔ اس میں یہ بات پیسے کی تھی نہیں، دراصل وہ حاجی کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ حمید کو اپنی فیملی سے باہر کر کے اپنے طرفدار بنانا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اچانک حمید کی گردن پر پاؤں رکھا کہ مجھے اپنا پیسہ تمہارے لیے ایک تکیہ لاتا ہوں۔
زحمت دی میں نے؟
نہیں بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر کار ہر چیز کا اپنا قاعدہ قانون ہوتا ہے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ جس وقت سریا نے حمید سے اپنا پیسہ مانگا، اس کا ہاتھ خالی تھا۔ سوچا کیا کروں، صرف یہ کر سکا کہ اپنی بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑا اور روپوش ہو گیا، اور وہاں پوش علاقے میں اپنے لیے گھر لے کر رہنے لگا، وہاں پار اوپر۔
لیکن وہاں بھی نہیں ٹھیک ہے، وہاں سے بھی چلے گئے۔
ہاں میں جانتا ہوں، ابھی دو ہی سال گزرے تھے کہ دوبارہ لوٹ کے یہاں آ گیا۔
کہاں؟ آپ کے پاس ان کا ایڈریس ہے؟
پہلے اپنی پھوپھی کے پاس گیا، لیکن اس دفعہ جلدی وہاں سے نکل آیا۔
کیوں؟ کیا ان کا دوبارہ جھگڑا ہو گیا؟
ارے تمہارے پھوپھی نے اسے کہا تھا کہ تمہارے بھائی نے میرا حق کھایا، تمہارا حق کھایا، خلاصہ یہ کہ سب کا حق کھایا، تمہیں جا کے اس سے اپنا حق لینا ہوگا۔ میں نے کہا اچھی عورت نہیں تھی، ان دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا چاہتی تھی۔ اسی وقت دونوں میں بہت سخت لڑائی ہوئی، بہت بڑی لڑائی۔
کس بات پر؟
کیا بتاؤں، تمہارے پھوپھی نے اس سے کہا کہ میں نے محسن سے اپنا حق لینے کے لیے حاجی کے گھر کو آگ لگا دی، اور اس کا قصور محسن کے بچوں پر ڈالا۔ حمید اس بات پر ناراض ہوا اور اپنی بھی بچوں کو ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلا، اس دفعہ کسی اور جگہ، یہ جو دشتی روڈ ہے نا، وہاں پر جا کے کمرہ لیا۔ پھر اس نے ضد پکڑی اور کہا کہ پھوپھی کا پیسہ واپس نہیں کرے گا۔ مجھ سے کہا، پتا ہے کیوں واپس نہیں دے رہا ہے؟ اس جھوٹے الزام کی وجہ سے جو اس نے میرے بھتیجے پہ ڈالا، اس کا پیسہ ضبط کر دیتا۔ کیا بات ہے، تم جانتے تھے؟
نہیں نہیں جانتا تھا، لیکن آپ بھی کسی اور کو نہ بتائیں۔
ارے میں کیوں کہوں، یہ تو 15 سال پہلے کی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا مجھ سے کیا تعلق، مجھے ایسے نہیں دیکھو، میں بہت راز رکھنے والا انسان ہوں۔
مجھے یقین ہے۔
اسی وقت حمید نے مجھ سے کہا، کہا کہ اگر حاجی کو پتہ چل گیا تو خون کی ندیاں بہا دے گا، سنے گا تو سریا کو قتل کر دے گا۔ چائے پیو، تم چائے پیو نا، میں فروٹ لے کے آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔
آپ کے لیے باعث زحمت ہوئے، معاف کیجیے گا۔
نہیں یار، کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ حمید کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ جو اس نے پھوپھی سے لیا تھا، میرے بھتیجے مہندی کا حق بنتا ہے۔ وہ مہندی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کا بھائی کا لڑکا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ کہتا تھا اگر مجھے اس وقت پتا ہوتا تو میں پھوپھی کو دیکھ لیتا، اس کی خبر لے لیتا۔ ہاں تمہارے لیے ایک اور چائے؟
نہیں کافی ہے، اور جی نہیں کر رہا ہے، بس کافی۔
ارے اچھی لگی ہے تو اور پیو نا، بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے اس طرح بغیر کچھ کھائے پیے تو اچھی بات نہیں۔ تمہارے لیے ایک اور کڑک چائے بنا کے لاتا ہوں، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اور ہاں، جب سے آئے ہو میرے ذہن میں مسلسل ایک بات چل رہی ہے، لیکن یاد نہیں آ رہی ہے کہ اس نوجوان سے مجھ سے کیا پوچھنا تھا۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اب مجھے یاد آیا، تمہارا نام کیا تھا؟
مہدی۔
مہدی؟ اب بتا رہے ہو؟ میں ایک گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے بھتیجے سے بہت پیار تھا۔ اچھا تو وہ مہدی تم ہو؟ حمید تمہیں بہت چاہتا تھا۔
تو خدا کے لیے اگر آپ کے پاس ان کا کوئی اتھا پتا مجھے دے دیجیے، مجھے ضرور ان کو ڈھونڈنا ہوگا۔
اچھا اس کے بال بچوں کو ڈھونڈو، ان کو اس وقت بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو مہدی صاحب، میں حاجی کے زیر احسان ہوں، جب میں یہاں نہیں تھا تو انہوں نے میری ماں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، 2-3 مہینے کے بعد آ کے ان کو کچھ رقم دے جاتے تھے۔ میری باجی جیل آ کے مجھے بتاتی تھی، میں نے ان سے کہا باجی اسی پیسے سے اپنے لیے جہیز کا بندوبست کرو اور اپنا گھر بسا لو، उन्होंने यही किया। खुदा अम्मी जान को बख्शे,
खुदा उनकी मगफरत करे।
शुक्र है अम्मी ने मरने से पहले अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखा, खुदा का शुक्र।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मजीद क्या करूं। मेरे जहन में जो जगह भी आई मैं वहां गया ढूंढा, लेकिन कहीं वो नहीं थे।
उसकी बेटी की स्कूल ढूंढो। देखो जब बेटी मिल जाएगी तो माँ भी मिल जाएगी उसकी।
उनकी बेटी का स्कूल?
हाँ, चाय पी लो, मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैंने ये तरीका जेल से सीखा है अपने साथियों से। देखो मसलन एक आदमी जेल में आता है, उसकी बेचारी बीवी अपने शौहर से शर से निजात पाने के लिए कहीं जाके खुद को गुम कर देती थी। फिर ये बेगैरत कैदी छूटने के बाद बच्चे के स्कूल का पता हासिल कर लेते थे और फिर बच्चे के जरिए माँ तक पहुँच जाते थे और दोबारा बेचारी बीवी की जिंदगी को तबाह कर देते थे। हाय मेरे खुदा, ये दो टांगों वाला इंसान कैसी कैसी हरकतें करता है। ठंडी हो गई?
नहीं नहीं ठीक है, अगर मुझसे कोई काम नहीं तो अब मैं फिर चलता हूँ।
अरे नहीं मेहंदी, अभी काम है। असल में एक बात करना चाहता था, लेकिन यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। रहेगी ना?
हाँ रहेगी।
देखो मेहंदी मियाँ, हाजी साहब का मुझ पर बहुत हक है। असल में जब पुलिस ने हमीद के कमरे पर छापा मारा और वहाँ से मुंशियात मिली तो मैंने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, कहा कि मुंशियात मेरी, ताकि हमीद को जेल ना हो। हाँ अगरचे इस अरसे में उसने इजाला किया, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दें ताकि मैं इस घर के ज़रा सफाई शफाई करूँ। मैं अपनी बाजी और बहनों को यहाँ आने के लिए आने वाले बहुत बुरी बात है कहें कि इस घर का कितना बुरा हाल है।
लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि हमें चचा एडिक्ट नहीं है।
मैंने कब कहा, कहाँ से मालूम कि वो भी नशा करता हो और कहाँ से मालूम कि नहीं करता। मैंने ये बात कही कि मेरा मतलब ये था कि मैं अभी इस मरहले में नहीं पहुंचा के अपने दोस्तों को बेचूं। देखो अगर मैंने पुलिस के सामने मुंशियात के इल्जाम अपने सर पे लिए तो सिर्फ इसलिए कि हमीद साहब ने मेरे साथ बहुत एहसान किया है, भलाई की है।
मतलब हाजी नेमतुल्ला इस खातिर कि आपने हमीद का जो अपने सर लिया था, हर महीने आपके घर वालों की मदद करते थे।
नहीं मेहंदी मियां, कभी किसी से जाके बात ना करना। अरे हाजी साहब तो खैर खाई और नेकी की रूह से ये काम करते थे। इल्जाम वाली बात सिर्फ मेरे और हमीद के दरमियान थी और कोई नहीं जानता। मेहंदी
ये जी।
मैं आपका नौकर मेहंदी साहब, मेरी सुनते हो तो हमीद को मत ढूंढो। हमीद के देखने से कोई खुश नहीं होगा। मेरी अम्मी के बकौल आजी साहब आखिरी उम्र में हैं, उनको इस खुशफहमी में रहने दो कि उनका बेटा खुश हो खुर्रम है और पौश इलाके में रह रहा है। उस तस्वूर के साथ मरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं?
नहीं जनाब, मैं जैसे भी हो हमीद चचा को ढूंढ के घर लेके आऊंगा।
मेहंदी मियाँ देखो, आखिरी दिनों में हमीद फुटपाथ पर सोने लगा था, उसे इसकी जिंदगी की आदत हो गई है। तुम उसे कैसे लौटाओगे?
क्या आप जेल में नहीं थे, सजा नहीं काट रहे थे, तो इन चीजों कहाँ से जानते?
मेरे तीन चार दोस्त जेल से आए, उन्होंने कहा कि उनको पुल के नीचे देखा, दूसरे नशेड़ियों के साथ नशा कर रहा था। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मेहंदी तुम मत जाओ। तुम लेकिन मुझे हाजी साहब की फिक्र है कि जिन्होंने मेरी गैर मौजूद में मेरी माँ बहनों की मदद की। मेहंदी अगर हाजी ने हमीद को जाने में देखा तो उनको अटैक आ जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम।
अलैकुम सलाम।
क्या हुआ है?
कुछ नहीं,
अहमद चचा को काम था वो चले गए। आप कहाँ थे? कुछ हुआ है क्या?
नहीं बस तबीयत ठीक नहीं।
तो अंदर आ जाए ना,
यहाँ बेहतर है।
भाई सईद ने फोन किया था कि मेमारियान एजेंसी आया था, चेक मांग रहा था।
ऐसी की तैसी, मेमारियान की भी और सईद की भी, फोन करके उसे कह दो कि मैं आखिरी पैसे तक अपना तावान लूंगा तब चेक दूंगा।
अच्छा ठीक है, अब इतना गुस्से में क्यों है?
गुस्सा हो रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें 10 दफा नहीं कहा कि मुझे इस बंदे की शक्ल से साफ लगता है कि पैसा देने वाला नहीं? तुमने कहा कि नहीं अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी।
मैंने गलती की ना?
गलती की बस इतना ही, मैंने 2 दफा ये वर्कशॉप बगैर कोई पैसा लिए बेची, वो भी 2 अफराद को। कोई सुनेगा तो समझेगा मैं पागल।
अच्छा जाने दें।
आओ देखो फानी ने मुझे कितनी दफा फोन किया, उसका SMS पढ़ लो क्या लिखा उसने।
अब जाएंगे?
क्या करूं ना जाऊं?
आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन नुकसान हमें इस फानी ने पहुंचा है और अब SMS कर रहे हैं ताकि कसूरवार ना समझा जाए। उसने SMS भेजा क्यों?
क्या करूं, नहीं जाऊंगा तो बात शिकायत और अदालत तक पहुंच जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी।
जाए अदालत में, हमें क्या खौफ है? आप किस चीज से डरते हैं?
ये मुझे दो लाओ। तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो, तुम क्यों नहीं समझते, सो रहे हो क्या? तुमको नहीं पता कि अगर इस तरह फंस जाएगा 10 साल तक हमें दौड़ना पड़ेगा इसे?
कल मैं भी आपके साथ।
नहीं आने की जरूरत नहीं है, वहाँ आके फिर कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, फानी को गुस्सा आ जाएगा, काम मजीद बिगड़ जाएगा। फानी ने तो कम से कम 200 मिलियन में दिए, तो तुम्हारे दोस्त ने क्या दिया? अभी पैसा दिया नहीं और वर्कशॉप के लिए मंसूब बना रहा है। अच्छा ये बताओ बैंक से आदमी क्यों लेके आया था?
मुझे क्या मालूम।
देखो सईद को फोन करो और उसे कहो कि मेरा भाई कह रहा है मैं तावान के एक एक पाई वसूल करके छोड़ूंगा ताकि ये कमीना इंसान बन जाए और आइंदा जेब में पैसा ना हो तो कोई प्रॉपर्टी ना खरीदे।
अच्छा शुक्रिया, सामने रब्ता किया?
नहीं रब्ता नहीं किया, वो कोई बेकार थोड़ी है कि हमारे फैसले के इंतजार में बैठा रहे कि हम वर्कशॉप बेचते हैं क्या नहीं। इस शहर में और भी बहुत सी जगह, जाके कहीं और सरमायाकारी करेगा, उसने जरूर कोई और जगह देखी होगी।
भाई आप फिक्र न करें, हम मिल के सईद की एजेंसी जाएंगे, वो तेज लड़का है, एक हफ्ते के अंदर अंदर वर्कशॉप के लिए कोई ग्राहक ढूंढ लेगा।
ये बताओ कि मैं सईद को जानता हूँ क्या? सईद को तुम तो जानते हो, उसे कहो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया तावान नहीं भरेगा मेरी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पर बाकी और जारी है।
हेलो हेलो,
अस्सलाम
वालेकुम। से आवाज कैसे हो?
ठीक हूँ।
मैंने चेक की बात की मेहदी से, वो सख्त गुस्से में थे।
अरे भाई जबरदस्ती ही सही चेक उनसे लेने पड़ेंगे।
क्या मतलब कि जबरदस्ती ले लूं? अरे कैसे लूं, जबरदस्ती हो सकता है क्या?
नहीं लोगे तो मैं फंसूंगा भाई।
देखो मैंने पहले ही दिन तुमसे कह दिया था कि इस तरह के कामों में इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं।
हाँ आते हैं लेकिन सिर्फ मेरे लिए।
अच्छा सियावश, हेलो हेलो, ताज्जुब भाई कैसा लड़का है ये भाई।
अस्सलाम वालेकुम
मेमारियान साहब, आप ठीक हैं?
बहुत शुक्रिया।
मेमारियान साहब मेहदी बहुत गुस्से में, शायद आपको फोन करे, अगर उसने फोन किया तो प्लीज जवाब ना दें।
क्या हुआ है जो गुस्से में?
नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है।
कहीं मेरे चेक को बाउंस ना कर दे?
नहीं फिक्रमंद ना हो, कहा ना कुछ नहीं हुआ है।
ये सब तुम लोगों के करिश्मे है, वरना मैं अपना चेक किसी को देता नहीं।
मेमारियान साहब आपके पास तो सियावश का चेक है ना?
मेरे चेक इससे ले लो लड़के, वरना बहुत नुकसान उठाओगे।
ठीक है मैं दोबारा उससे बात करता हूँ, बस आप उनके फोन का जवाब मत दीजिएगा।
हल करो इस मसले को तुम।
ठीक है मैं उसको हल कर दूंगा, आप परेशान ना हो।
अगर मेरे लिए कोई मसला पैदा हुआ तो भूल जाओ अपनी लोन को तुम।
ठीक है
बस मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा।
ठीक है
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। ठीक है
मेहती।
माफ करना दरवाजे की आवाज ने जगा दिया।
अरे नहीं मैं तो जाग ही रही थी और आपका इंतजार कर रही थी, अंदर क्यों नहीं आए?
आता हूँ, तुम जाओ सो जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। फूफी अभी नहीं आई?
नहीं अभी नहीं आई, कह रही थी कि ऑपरेशन करना, देर से आऊंगी।
बताएंगे नहीं कि इतने परेशान क्यों हैं।
बताऊं ताकि तुम्हें भी परेशान कर दूं? मैं तो पहले से ही तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं।
मेहती,
इन दोनों में जबकि मुझे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए, बाहर रहता हूं। अगर मैं होता भी हूं तो तुम्हारे पास नहीं होता।
मेहती, खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें। जब आप अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बताते तो मैं और भी परेशान हो जाती हूँ।
बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे इन कामों को किसी नतीजे पर पहुंचाने दो, उसके बाद।
वर्कशॉप का कोई मसला है?
नहीं, चचा हमीद को ढूंढ कर घर वापस लाना चाहता हूँ। इस तरह दादा जान बेहतर हो जाएंगे।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इन हालात में वर्कशॉप की परेशानियों से भी थोड़ा आप निकल आएंगे।
हाँ, लेकिन अब दादा जान के साथ अबू जान का मसला भी शुरू हो गया है।
क्या मतलब?
कुछ नहीं, अबू जान भी हमीद चचा को ढूंढने में मेरी मदद करना चाहते हैं।
तो मदद करें।
करें, लेकिन मुझे खुद भी इल्म नहीं कि हमीद चचा किन हालात में है। अबू जान की तबीयत अभी से खराब होने लगी है।
क्यों, उन्होंने कुछ सुना है क्या?
हाँ, हमीद चचा के एक पुराने दोस्त ने अबू के सामने कहा कि हमीद चचा ने उसी जमाने में वो सारी रकम जो दादा जान ने हिस्से के तौर पर उनको दी थी गंवा दी है।
अरे जाए जहन्नुम में। मैं समझी अब क्या हुआ है। इंसान पैसे के लिए तो परेशान नहीं होता है, सेहत सलामती अहम है। आप इसी वजह से परेशान थे?
कुछ अरसे से जिस भी चीज में हाथ डालता हूँ खराब हो जाती है। दो दफा वर्कशॉप का सौदा कर चुका हूँ लेकिन कुछ नहीं बन पाया। मैं एक वर्कशॉप बेचने के भी लायक नहीं रह गया।
खुद को इतना परेशान ना करें, इतना ज्यादा मत सोचें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा सोचना भी इंसान को बीमार कर देता है।
क्या ये हो सकता है कि ना सोचूं?
क्यों नहीं हो सकता है, खुदा के हवाले कर दें। याद है जब हम पहला बच्चा लाना चाह रहे थे और मैं डॉक्टर की निगरानी में रह के चाह रही थी कि पहला बच्चा लड़का हो, तो आपने क्या कहा? कहा कि नहीं, मैं वही चाहता हूँ जो खुदा चाहता है। आपने कहा क्या मैं खुदा से बेहतर जानता हूँ जो उसके कामों में दखल दूं? उस दिन मुझे अपनी बात पर बहुत शर्म आई।
लेकिन परस्तु ये वर्कशॉप मेरी नहीं थी, मुझे कोताही नहीं करनी चाहिए थी।
कौन सी कोताही? यकीन करें, हम सब वर्कशॉप के बारे में सोचने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। खुदा ने खुद फरमाया कि हर सख्ती के बाद आसानी आती है। आप 10 बार ये आयत मेरे सामने पढ़ चुके हैं। जिंदगी में मुश्किलात ना हो तो जिंदगी तो बिल्कुल बेमजा हो जाती है।
हाँ, बहुत।
तो जब ये जानते हैं तो खुद को क्यों अजियत दे रहे हैं?
परसों जब मैंने दादा जान को इतना थका और परेशान देखा तो मुझे शदीद दुख हुआ। खुद से कहा, मेहदी तुम कहाँ थे? इतनी देर से क्यों उनकी याद आई?
अच्छा, तो फिर देखें, ये वर्कशॉप का बंद होना भी किसी मसलहत की वजह से था। ये सब हवादिस इसलिए पेश आए कि हम यहाँ आएं और देखें कि ये कितने तन्हा है। अब आप सोचें, अगर वर्कशॉप बंद ना होती और हमारा घर ना बिकता और आराम से हम बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहे होते, घर खरीदते, सफ़र पे जाते, गाड़ी खरीद लेते, फिर अचानक हमें इत्तला मिलती कि आपके दादा जान फोत हो गए, तो ये तो और भी बुरी सूरत हाल होती। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान हर बुरी वाकई को उस नज़र से देखे तो इसमें बहुत सी अच्छाइयां निकाल सकता है।
बात यह है कि मैंने ऐसा काम शुरू किया कि शायद उसका अंजाम अच्छा ना हो।
क्या मतलब?
मतलब ये कि शायद हमें चचा को ना ढूंढ सकूं, या अगर ढूंढा भी तो।
मेहती, इतना अगर मगर ना करें। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दादा दादी की मदद करें, तो आप अपने फर्ज पर अमल करें और कुछ और ना सोचें। बकौल आपके, खुदा के काम में दखल देने की जरूरत नहीं। नमाज तो पढ़ चुके हैं ना?
हाँ, अजान के बाद मस्जिद गया था।
अच्छा, तो फिर उठें, आए दोनों चाय मिलके पीते हैं। बहुत अरसा हो गया एक दूसरे से गपशप नहीं लगाई। उठे,
तो
ये भी बचा है।
आइए।
सलाम
अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके
जी, ओके, शुक्रिया, चलता हूँ। शुक्रिया।
ठीक हो? परेशान क्यों हो?
शकील ने अभी अभी फोन किया, कह रहा था कि उस आदमी ने माल भिजवा दिया है।
आखिर क्यों?
क्योंकि बात है ही नहीं फरहाद। ये साहब तो दो हफ्ते से इसरार कर रहे थे कि मैं आपका माल मजीद यहां नहीं रोक सकता। मैंने तो कहा था तुमसे दो दिन में पहुंच जाएगा बंदरगाह और फिर पहुंच जाएगा तेहरान। कहां रखेंगे उसे?
फिलहाल चंद दिन माल को बंदरगाह में ही रहने दो।
वहां नहीं हो सकता। मैंने तो कहा था कि वो छोटा सा शहर है, जासूस और चुगलखोर भरे पड़े। तुमने इतनी ढील दी कि पानी सर से ऊपर हो गया।
अब क्या करें?
मुझसे पूछ रहे हो? मैंने तो कहा था कि अपना पैसा उस फरामन से ले लो, यही शहरियार का गोदाम पगड़ी पर ले लो। तुम नहीं माने।
कहा था? ये कमीना कह रहा है कि अभी मेरे हाथ में पैसा नहीं आया।
देखो फरहाद, तुमने अपनी सारी पूंजी इस माल पर लगाई है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम भी और मैं भी। तो कुछ सोचो।
माल को अदीप के गैरेज में भेज दो।
वहां की सील तो पिछले ही दिनों खुलवाई है। सुना है अदीप को भारी जुर्माना भी देना पड़ा है। वो तो अब डर गया है, मैं नहीं जानता कि मान जाएगा। दूसरे एक है, वो जगह मशकूक हो चुकी है, आए रोज पुलिस की निगरानी रहती है वहां।
कोई और चारा नहीं है, कोई और जगह नहीं है।
माल को यहां ले आए?
नहीं यार, यहां की तो बात ही मत करो।
ज्यादा बुरा ख्याल भी नहीं है। सबको चंद दिन की छुट्टी पर भेजो, माल ला के इन कमरे में घुसेड़ देंगे यहां पर।
तुम भी क्या बात कर रहे हो जलाल, ये लोग पूछेंगे नहीं कि किस लिए छुट्टी पर भेजा जा
रहा है। अगर आप कहेंगे कि इन दिनों की तनख्वाह भी मिलेगी तो नहीं पूछेंगे।
इस कंपनी में जलीली से लेकर दूसरे सब मुझे पसंद नहीं करते हैं और सब तमाम उम्र से आगा हैं। अगर उनको पता चल गया तो अपने पुराने बदले भी मुझसे चुका लेंगे। बेहतर है कि अदीप के घर में जाए।
मैं बता रहा हूं तुमको, तुम गोश्त को बिल्ली की नाक के सामने डाल रहे हो।
अगर ये फरहमंद एक महीने के लिए हमारा माल वहां रखवा देता तो सारे मसाइल हल हो जाते।
तुमने बात की थी उससे?
हाँ यार, किसी भी सूरत में नहीं मान रहा है। मैं उसको सबक सिखाना चाहता था लेकिन फिलहाल तो मेरे 200 मिलियन उसके पास फंसे हुए हैं और मुझ पर हंस रहा है। बेवकूफ़ी की जो हाथ से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया, अगर एजेंसी में लिखवाते तो उसे सबक सिखा चुका होता, उसे वर्कशॉप ना बेचने देता, इतना रुला था कि उसे नानी याद आ जाती।
तो वो भी तुम्हारे चेक बाउंस करवा कर तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट ले आता।
कोई बात नहीं, मैं चंद दिन गायब हो जाता ताकि न वो वर्कशॉप बेच सके और न पैसे ले सके।
तुम अपने हाथ से लिखे गए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी शिकायत कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक मुतबर चीज है।
हाथ के लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट पर ना तो कोई कंप्यूटर रिकॉर्ड है ना कहीं रजिस्टर हुआ है। वो चाहे तो किसी भी एजेंसी में जाकर अपनी वर्कशॉप बेच सकता है और मुझे पता भी नहीं चलेगा।
अगर उसने ज्यादा तंग किया है तो किसी तरह से उसे सबक सिखा सकते हो। इसको वर्कशॉप बेचने दो, तुम कुछ ना कहो, बस किसी बहाने से वो कॉन्ट्रैक्ट इसे वापस नहीं करो। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि उसने वर्कशॉप बेच दिया है तो हाथ का लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट सामने ले आओ और उसको शिकायत करके कहो कि उसने मुझसे 200 मिलियन तुमान लेकर वर्कशॉप का सौदा मुझसे किया था और अब जाके किसी और को बेच दिया है।
नहीं हो सकता, मुझे 200 मिलियन की अब जरूरत है, उसे वापस लेना होगा। वापस लेने का मतलब है मैं राजी हूं कि वो अपना वर्कशॉप बेच दे।
हाँ सच कहते हो, उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फरमन को सबक सिखाना इतना जरूरी नहीं कि उसकी खातिर तुम्हारा माल पकड़ा जाए और तुम तबाह हो जाओ। रकम लो और शरीर गोदाम पकड़ लो फौरन अपने हाथ में। कल उसने फोन पर कहा था कि एक और गाहक है मौजूद हमारे पास, तो मतलब अब माल पहुंचे तो अदीप के गोदाम में भिजवा दूं।
तुम कह रहे हो ना कि बंदरबास पहुंचने में दो दिन लगेंगे, है ना?
हाँ
ठीक है, शायद इन दो दिनों में फरमन रकम वापस कर दे तो जाके शहरयार का गोदाम ले लेंगे।
ठीक है फिर, कोई काम तो नहीं?
नहीं।
एक रास्ता है।
किस चीज का?
फरामन को फंसाने का।
मैं समझा माल रखवाने के लिए कोई रास्ता मिला है।
कुछ ऐसा करो कि ये रकम तुम्हारे अकाउंट में डाले।
उससे क्या होगा हाँ?
उससे चेक नहीं लेना ताकि तुम रकम नकद जाकर अकाउंट से निकलवा सको या उसे रसीद दो। इसे अपने अकाउंट का नंबर दो कि रकम तुम्हारे अकाउंट में डाले।
जब वो मेरे अकाउंट में रकम डालेगा तो बैंक उसे रसीद देगा और रसीद खुद सबूत है अफलातून साहब।
हाँ, लेकिन उस सूरत में तुम ये दावा कर सकते हो कि उसने तुम्हें बताए बगैर तुम्हारे अकाउंट में रकम डाली। देखो देखो मेरा दिमाग कितना अच्छा काम करता है। ये फरामंद को फंसाने का वाहिद रास्ता है फरहाद साहब, जान लो इस बात को। खुदा हाफिज़।